ये भी आपको माम ने ही बताया होगा, माहिरा दर्द से मुस्कुराकर बोली। माम ने कभी उसका ख्याल नहीं रखा, मैं ही थी जो उससे हमदर्दी करती थी, मगर आप उससे वो रिश्ता भी छीन लिया। नासिर खान की आवाज में थकान भी थी और समझाने की कोशिश भी। जब वो तुम्हारा शौहर नहीं था तब भी तुम्हें उससे हमदर्दी थी, अब तो वो तुम्हारा शौहर है माहिरा, उसका साथ दोगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। माहिरा ने बिना झिझक ठंडी आवाज में जवाब दिया। मैं उसे अपना शौहर नहीं मानती अब्बू, मैंने उसे बचपन से इस घर में देखा है, मेरे लिए वो हमेशा एक मुलाजिम जैसा ही रहा है, बस थोड़ा हमदर्दी थी और कुछ नहीं। उसके लहजे में अजीब सी सख्ती थी, जैसे उसने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हों। फिर वो आगे बोली, और आप ताया अब्बू से पूछ रहे थे ना कि फैजान क्या कहकर गया है। नासिर खान ने नज़र उठाई, दिल में एक अनजाना डर था। माहिरा ने एक एक शब्द ठहर ठहर कर कहा। उसने कहा है कि आप लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली, और जो 3 लाख रुपए हैं वो भी आप ही रख लीजिए। ये सुनते ही जैसे वक्त ठहर गया। नासिर खान के चेहरे का रंग उड़ गया, वो लड़खड़ाते हुए सोफे पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। असल में इस घर की दीवारों में सिर्फ रिश्ते नहीं, राज भी छुपे थे। नासिर खान और जुबैदा बेगम के बीच फर्क साफ था। नासिर खान दिल से बुरा इंसान नहीं था, मगर हालात और दूरी ने उसे कमजोर बना दिया था। वो ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहता और घर की बागडोर जुबैदा बेगम के हाथों में थी। जुबैदा बेगम, उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। उसने जानबूझकर फैजान को हमेशा नौकरों जैसा ही रखा, ना अच्छे कपड़े, ना बराबरी का दर्जा, ना ही वो अपनापन जो एक बेटे को मिलना चाहिए। उसके दिल में एक ही डर था, अगर फैजान पढ़ लिख गया, समझदार बन गया, तो वो अपने हक की मांग करेगा, और वो हक वो अपने बेटे के लिए बचाकर रखना चाहती थी। इसी लालच ने रिश्तों को धीरे धीरे जहर बना दिया। नासिर खान को आज पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने सिर्फ घर से दूरी नहीं बनाई थी, बल्कि अपने ही बेटी को भी खो दिया था, और शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात करूं, नासिर खान ने धीमे टूटे हुए लहजे में कहा, जैसे हर शब्द उसके दिल पर बोझ बनकर उतर रहा हो। हम अभी भी सब संभाल सकते हैं बेटा, माहिरा हल्का सा हंसी, मगर उस हंसी में कड़वाहट थी। संभालेंगे कैसे डैड, उसने सीधा सवाल किया। आप उसके पैसे वापस कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टी भी, लेकिन क्या आप उसकी वो कमी पूरी कर सकते हैं जो उसके अंदर है? वो अब पूरी तरह अपने जज्बात में बह रही थी। वो आज भी नौकरों जैसा लगता है, उसमें कोई पर्सनैलिटी नहीं है, मैं उसे किसी से मिलवा भी नहीं सकती, उसमें वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता। आप समझते क्यों नहीं डैड? इतना कहकर वो उनके पास आकर बैठ गई, जैसे अपने फैसले को और मजबूत कर रही हो। मैं उसके साथ नहीं रह सकती, उसकी आवाज़ अब धीमी थी मगर पहले से ज्यादा सच्ची। मैं उससे नफरत कर सकती हूँ, उसके लिए हमदर्दी भी महसूस कर सकती हूँ, लेकिन उससे प्यार नहीं कर सकती। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद से भी सच छुपाना चाहती हो। मैं उसे कभी वो शौहर वाली इज्जत नहीं दे पाऊंगी, मेरी नज़र में वो हमेशा वही रहेगा, एक ऐसा इंसान जिसे मेरी हमदर्दी की ज़रूरत है, ना कि वो जो मुझे संभाल सके। नासिर खान चुपचाप उसे देखता रहा, हर एक लफ्ज़ जैसे उसके दिल को चीर रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ, उसने सिर्फ एक बेटे के साथ नहीं, अपनी बेटी की जिंदगी के साथ भी नाइंसाफी कर दी है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। माहिरा धीरे से उनके कंधे पर सिर रख कर रोने लगी, जैसे अंदर दबा हुआ सारा दर्द अब बाहर आ रहा हो। नासिर खान ने कांपते हुए हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई तसल्ली नहीं थी, बस एक एहसास था कि कुछ फैसले वक्त पर सही ना लिए जाएं तो पूरी जिंदगी को गलत बना देते हैं। रेहान नूर को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। नूर उसके बगल में बैठी फोन में इतनी उलझी हुई थी कि जैसे उसे आसपास की कोई खबर ही ना हो। कुछ देर तक रेहान चुप रहा, लेकिन वो नूर से बात करना चाहता था। आखिर उसने पूछ ही लिया, तुम अरमान के साथ क्यों नहीं गई? क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है? नूर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, तो क्या मैं आपके साथ नहीं आ सकती? उसके लहजे में हल्की सी नाराजगी थी। आपको मुझे ड्रॉप करने में कोई प्रॉब्लम है? नूर ने फिर कहा। असल में वो अरमान की बात से बचना चाहती थी, उसका नाम सुनते ही उसे गुस्सा आने लगता था। रेहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, असल में मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं बल्कि पिक करना चाहता था। नूर ने उसकी तरफ देखा, अच्छा तो ठीक है ना, आप मुझे पिक भी कर लेते? रेहान ने सिर हिलाया, अब कोई फायदा नहीं है, मेरी कई मीटिंग्स हैं, नूर ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। मगर मुझे लगता है कि अगर आप सच में चाहते तो मुझे पिक करने के लिए अपनी मीटिंग्स छोड़कर आ सकते थे। खैर कोई बात नहीं, शायद ऐसी ही बात है, उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत थी। रेहान ने शरारत भरे अंदाज में कहा, बिल्कुल कोई बेवकूफी होगा जो अपने सारे काम छोड़कर तुम्हें पिक करने आए। नूर ने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी बात सुनते ही वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। क्या कहा आपने? उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आप मुझे फालतू कहना चाहते हैं, उसने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, रेहान ने जल्दी से सफाई दी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। दरअसल वो अंदर ही अंदर खुश था कि नूर उसके साथ आना चाहती है, बल्कि ये चाहती है कि वो उसे पिक करे। लेकिन नूर तो बस अपने रूटीन के हिसाब से बोल रही थी। जो वो कह रही थी, रेहान उसका कुछ और ही मतलब निकाल रहा था। नहीं नहीं, बताइए मुझे, नूर ने जिद से कहा। जब तक आप नहीं बताएंगे ना, मैं उतरूंगी ही नहीं। उसके लहजे में वही बचपना था, जैसे छोटी सी बात पर अड़ जाने की आदत। असल में नूर को हमेशा से लगता था कि रेहान पर उसका सबसे ज्यादा हक है। बचपन से उसके अब्बा भी अक्सर उसे रेहान के पास ही छोड़ जाते थे। शायद इसी वजह से वो उसके सामने खुद को रोकती नहीं थी। आपको मेरी नाराजगी की कोई परवाह ही नहीं है, नूर ने मुंह बनाते हुए कहा। बिल्कुल है, रेहान ने तुरंत जवाब दिया। अब उसकी आवाज नरम हो गई थी। नूर ने दोनों हाथ बांध लिए और खिड़की के बाहर देखने लगी। बहुत बुरे हैं आप, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, फिर हल्की सी झुंझलाहट के साथ बोली। सीधा बोल देते ना, मेरा मन ही रख लेते। मैं कौन सा सच में कह रही थी कि आप मुझे पिक करने आओ? उसकी बातों में गुस्सा कम और मासूमियत ज्यादा थी। वो जो कह रही थी उसमें उसकी बचपन वाली जिद साफ झलक रही थी। रेहान उसे देखता रहा, उसे समझ आ रहा था ये शिकायतें असल में नाराजगी नहीं बल्कि हक जताने का एक तरीका थी। नासिर खान रुक नहीं पाया, वो चला गया। वो अपनी ही बेटी के सामने ठहर नहीं सका, क्योंकि उसकी आंखों में जो दर्द था उसे सहने की हिम्मत अब उसमें नहीं बची थी। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा बोझिल। उसे पहली बार साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अगर उसने वक्त रहते फैजान पर ध्यान दिया होता तो शायद आज हालात इतने बिगड़े हुए ना होते। वो एक बाप होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पाया था। उसने अपने भाई की प्रॉपर्टी तो ले ली थी, लेकिन उसके साथ जुड़ी अमानत, एक मासूम बच्चे की परवरिश, वो नहीं निभा सका। यही बात अब उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने सिर्फ फैजान के साथ नहीं बल्कि अपनी बेटी के साथ भी नाइंसाफी की है। एक तरफ उसने एक बेटे का हक छीन लिया और दूसरी तरफ अपनी बेटी की जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में बांध दी जिसे वो दिल से कभी स्वीकार ही नहीं कर पाई। नासिर खान खुद की नजरों में गिर चुका था। वो पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि अगर वक्त वापस मिल जाए तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन उसे पता था कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पछतावा तो मिलता है मगर सुधारने का मौका नहीं, और उसी पछतावे के साथ वो उसी दिन वापस लौट गया।
एक टूटा हुआ इंसान बनकर। उम्मीद करती हूँ मेरी ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी।